ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय सांख्य योग दर्शन, हम इस दूसरे अध्याय के अंतिम चरण तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। अगले बुधवार को इस दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक लिया जाएगा। तो भगवान अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए शास्त्र कह रहे हैं। तो भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, परंतु शास्त्र में इतनी शक्ति कि वो अर्जुन, जो कि अपने आप को इतना असहाय मान रहे थे, कि अर्जुन जैसे योद्धा की भुजाओं से गांडीव उठ नहीं रहा था। तो जैसे कि प्रथम अध्याय में इसको भगवान कहते हैं हृदय दौर्बल्यम, कि ये अर्जुन की दुर्बलता शारीरिक दुर्बलता नहीं थी, हृदय की दुर्बलता थी, और जिसके वजह से उसके लक्षण शारीरिक रूप में दिख रहे थे। और भगवान ने अर्जुन को ये शास्त्र का उपदेश देकर अर्जुन से शस्त्र उठवाया, लेकिन क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान यहां पर यह सिखा रहे हैं कि शस्त्र बिना शास्त्र के केवल हिंसा है, और वही शस्त्र धर्म की स्थापना कर सकता है जबकि उसके पीछे शास्त्र या उसके नीचे शास्त्र की बुनियाद हो। तो हमने पिछले हफ्ते सुना कि जो दो महत्वपूर्ण बातें एक कृष्ण भक्त या योगी की भगवान ने बताई, एक तो कामनाओं की प्रबलता, काम प्रविशन्ति यद्वत्, लेकिन उसके साथ साथ मन की अचलता, फियर्स फ्लो ऑफ डिजायर्स, रॉक स्टेडीनेस ऑफ द माइंड। तो अब ये दोनों जो हैं, ये एक योगी को परिपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि इस संसार में जो काम वासनाओं की प्रबलता है या कामनाओं की जो प्रबलता है, इसके वेग को जैसे कि नदी के वेग को कोई रोक नहीं सकता, तो उसी प्रकार से इन वेगों को कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमें करना क्या है? भगवान कह रहे हैं कि हमारे मन को बृहद बनाना है, या अचल, एक किसकी तरह? एक अचल समुद्र की तरह। तो ये उदाहरण के द्वारा भगवान ने पिछले श्लोक में एक परिपूर्ण योगी की व्याख्या दी। और आज के श्लोक का संबंध क्या है फिर? तो पिछले श्लोक में कृष्ण भक्त एवं योगी में अंतर क्या है ये समझाया, और आज के श्लोक में वास्तविक शांति प्राप्त व्यक्ति अथवा अचल व्यक्ति के फिर क्या आगे के लक्षण है। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः सशांतिम् अधिगच्छति विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशांतिम् अधिगच्छति विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशांतिम् अधिगच्छति। संस्कृत इस प्रकार से है, अंतिम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं सशांतिम् अधिगच्छति, कि वो व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। कौन व्यक्ति? पुमांश्चरति निःस्पृह। पुमांश का अर्थ है मनुष्य, चरति का अर्थ है जो जीता है या जीना, चरति का अर्थ है जीना, जीवन। तो किस प्रकार का जीवन ऐसा मनुष्य जीता है जो कि वास्तविक शांति को प्राप्त किया है? फिर भगवान कहते हैं विहाय कामान, विहाय का अर्थ है जिसने त्याग दिया है। किसे त्याग दिया है? कामान, कामनाओं को, भौतिक कामनाओं को जिसने त्याग दिया है। और निस्पृह, स्पृहा भी भौतिक इच्छाओं को कहा गया है। तो निस्पृह का अर्थ है कि सारी उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। तो यहां पर देखिए, भौतिक इच्छाओं के संदर्भ में भगवान दो एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, विहाय कामान और निस्पृह। और फिर उसके साथ साथ दो और लक्षण बताए हैं, निर्ममो, जिसके अंदर कोई भौतिक ममता नहीं है या आसक्ति नहीं है, और निरहंकार, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मिथ्या अहंकार या अभिमान नहीं है। तो यहां पर विशेष रूप से भगवान क्या बता रहे हैं कि तीन ऐसे पुमांस या ऐसे व्यक्ति के ये तीन गुण हैं। तो इसका अनुवाद हम देखेंगे, कौन से तीन गुण हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी भौतिक ममता त्याग दी है, तथा जो अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यदि हमें इस संसार में वास्तविक शांति चाहिए, तो इस एक श्लोक में भगवान ने पूरा फॉर्मूला दिया है कि कैसे हम इस अशांत भौतिक संसार में वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने जो पिछली बार चर्चा किए थे कि ये जो तीन नुस्खे भगवान ने दिए आज के श्लोक में, निस्पृहा, निर्ममा और निरअहंकार, तो हमको ये जो नी, ये जो शब्द आ रहा है बार बार, तो हमको लग रहा होगा कि बहुत नेगेटिव थिंग्स है ये सारी, कि ये नी हर समय नेगेटिवली यूज नहीं किया जाता। जैसे कि संस्कृत का एक शब्द है निर्मल। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि निर्मल ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है या पॉजिटिव है, क्या कहोगे? है ना, किसी को लगेगा कि अरे भाई नी लगा दिया तो थोड़ा नेगेटिव हो गया ना। नहीं, लेकिन उसके आगे क्या है? मल, गंदगी। तो जिसके अंदर गंदगी नहीं है वो है निर्मल। तो इसलिए वो एक बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग है इसका, उस प्रकार से समझना है हमें कि यहां पर हमें भगवान कोई नेगेटिव मोड में नहीं ले जा रहे कि अरे भाई वास्तविक शांति प्राप्त करने के लिए मुझे ये न न न न न नी 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 ये सब नहीं करना है। नहीं, ये सारी बीमारियां हैं जो भगवान बता रहे हैं, स्पृहा, ममता, अहंकार, जैसे कि मल और निर्मल, वैसे ही निर्मम, निरअहंकार, निस्पृहा। तो इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद इस प्रकार से करते हैं, एक एक जो गुण है। पहला, निस्पृहा, डिवॉइड ऑफ मटीरियल डिजायर्स। निर्मम, डिवॉइड ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। और निरअहंकार, डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार से रहित। तो ये तीन नुस्खे भगवान ने दिए हैं आज के श्लोक में वास्तविक शांति प्राप्त करने के। तो अब सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि भौतिक स्तर की शांति क्या है, क्योंकि वास्तविक शांति जानने से पहले हमें भौतिक स्तर की शांति लोग क्या परिभाषा है वो जानना आवश्यक है। जैसे कि यहां पे आपके सामने कि भौतिक स्तर की शांति क्या है, अशांति का अभाव। जैसे आजकल लोग जब मिलते हैं, हाउ आर यू, फाइन, नो प्रॉब्लम, तो जो फाइननेस है उसका डेफिनेशन आजकल क्या है कि कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्वास्थ्य अच्छा है। तो यहां पर भगवान उस प्रकार की शांति का उल्लेख नहीं कर रहे। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद ये उदाहरण दिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आज की 21वीं सदी में, ये वर्किंग डे है आज भी, पूरा त्रस्त होके काम कर ऑफिस से थक कर, पसीना पसीना थक कर, मन भी पूरा त्रस्त, शरीर भी थका हुआ, और फिर रात्रि में वो जब सो जाता है तो जितने सारे उसके जो टेंशन्स हैं पूरे दिन भर के, अब क्या हो रहे हैं, कोई टेंशन उसको याद नहीं आ रहा है, बॉस ने क्या बोला। हाँ, कई बार सपनों में आ जाते हैं। वो सपने क्यों आते हैं कि अगर निद्रा ठीक से नहीं है, जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि एक है जागृत अवस्था और फिर है स्वप्न अवस्था, और सबसे गहरी जो निद्रा की अवस्था है उसे कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति में कोई स्वप्न नहीं आता, एकदम बेहोश व्यक्ति। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि अरे मैं सो जाऊं तो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा या शांति प्राप्त कर लेता है, कि नहीं, कितना हम अपने आप को शांत महसूस करते हैं जब हम सो जाते हैं। एक व्यक्ति मुझे, मैं जब पिछली बार यूके गया था तो मुझे वो नए नए उधर मैनचेस्टर टेंपल में आना शुरू किए, तो वो बोल रहे थे कि मैंने जब से ये आपका हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू किया है बहुत अच्छी नींद आ रही मुझे। तो मैं मन में सोच रहा था, बहुतों का अनुभव है। तो उसने कुछ साइंटिफिक रीजंस दिए अभी, नहीं मैं बताता हूं क्यों होता है ऐसे। उसने मेरे को पूछा, आपको भी अच्छी नींद आती है कि नहीं आती? मैंने कहा जप के बाद आती है। तो वो बोल रहा है कि जैसे मैंने ये प्रभुपाद की पुस्तकों में पढ़ा कि जब ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है कोई, तो सारे उसके जो अभद्र हैं, अनर्थ हैं, वो सब दूर होते हैं धीरे धीरे। तो व्यक्ति को आज नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इतने टेंशन, अभद्र, अनर्थ है ये सारे। तो जप करने से होता क्या है, सारे टेंशन दूर हो गए, सारे अभद्र दूर हो गए, तो बचा क्या, नींद। तो अब ये उसका अंडरस्टैंडिंग है कि जब सारे अभद्र आपके दूर हो जाते हैं, सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, सारे टेंशन दूर हो जाते हैं, तो फिर बचा क्या? नींद। ये नहीं कि फिर कृष्ण प्रेम बचा है हमारे अंदर, जो कि हमारे आचार्य बताए। तो ये जो स्तर है, हाँ, ये नहीं कह सकते कि इसमें व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं हो रही, अवश्य ही उसे एक प्रकार की शांति प्राप्त हो रही है। हालांकि आजकल तो लोग इस स्तर पर भी जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। आई सेड नो टू अल्कोहल बट इट जस्ट डजंट लिसन टू मी। तो यहां पर कोई व्यक्ति तमोगुण में उसका सहारा लेके बहुत ही कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम का अर्थ है आर्टिफिशियली, वन हु आर्टिफिशियली ट्राइज टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर पीस, बट पीस इज समथिंग विच इज बेस्टोर्ड अपॉन, इट इज नॉट समथिंग विच यू अचीव और एक्वायर थ्रू सम पावर। और ये जो कृत्रिम तरीका है, ये कृत्रिम तरीका होने के वजह से ये ज्यादा समय तक वो शांति टिक नहीं पाती। जैसे ही फिर अलार्म बजा, व्यक्ति उठा, तो बस वही टेंशन शुरू। अरे उल्टा जितना ज्यादा सोएगा उतना ज्यादा वो टेंशन में उठता है फिर वो, क्योंकि लेट हो गया है कि नहीं। और जितना ज्यादा दारू पिएगा और उतना टेंशन उसका बढ़ेगा, क्योंकि फिर जो भी कुछ उसके वजह से जो तकलीफें होंगी। तो ये इसको क्या बोलते हैं कि टेम्पररी, दिस आर ऑल जस्ट टेम्पररी रिलीफ मेजर्स। जैसे एक बहुत बड़ा 5-स्टार होटल था जिसके सामने 2-3 भिखारी बैठा करते थे, तो रोज वो देखा करते थे आलीशान गाड़ियां वहां पे पार्क हो रही हैं, लोग जा रहे हैं खा पी के बाहर आ रहे हैं, और ये लोग अपना 50 पैसा 1 रुपया ये सब जो दिन की भीख मिल रही है बस उसी में काम चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो आपस में इनकी चर्चाएं चल रही थी, तो एक भिखारी दूसरे से कहता है कि अगले महीने मेरी बर्थडे, तो दूसरा पूछता है तो फिर तो मैंने प्लान किया है कि मैं लंच उधर लूंगा 5-स्टार होटल में। बोला तू चाहे 100 बर्थडे में भी जितना पैसा कमाएगा ना उसके अंदर जाके तू एक चाय का प्याला नहीं पी सकता। बोला नहीं, 100 रुपए मैंने 100 रुपए इकट्ठा किया है, 100 रुपए में मैं खा के दिखाऊंगा, पूरा फीस्ट खा के दिखाऊंगा, पूरा जो अंदर वो लोग जो भी बनाते हैं पूरा सब खा के बताऊंगा 100 रुपए में। तो उसने चैलेंज रखा, तो उसकी जब बर्थडे आई वो गया अंदर और ये डरा हुआ, इसको ज्यादा डर लग रहा था कि 100 रुपए में ही करके क्या आएगा अंदर। गया उधर बैठ के पूरा 5,000 का खा के, 5,000 का खा लिया उसने अंदर। फिर बाद में जब बिल विल आया, वो जब टाइम आया बिल भरने का, मेरे पास तो नहीं है भैया कुछ भी, सीधा सीधा साफ साफ, बहुत ईमानदार था बेचारा, बोला मेरे पास तो कुछ नहीं। तो अब वो क्योंकि एक बहुत ही आलीशान 5-स्टार होटल था, तो उनकी पॉलिसी ये थी कि अगर कोई बिल पूरा नहीं भर सकता तो वहां पे वो लोग सीन नहीं क्रिएट करते थे, क्योंकि बाकी कस्टमर को लगता है अरे ऐसे कस्टमर आते हैं आपके, तो लोग सीधा पुलिस को फोन करते थे कि पुलिस डील करेगा फिर इसको, तो अपना रेपुटेशन और इमेज बनाए रखने के लिए, 5-स्टार होटल है। तो यहाँ पे इसने 5,000 का खा लिया, तुरंत पुलिस को फोन किया, तो पुलिस आया हवलदार जी, उसको बाहर ले गया, क्या क्या चल रहा है। तो वो जानता था इंडियन सिस्टम कैसे वर्क था, 100 रुपया निकाला पुलिस को, चलो यार तुम भी चलो, मैं चलो। तो पुलिस भी खुश ये भी खुश, 5,000 का खा के आया, पुलिस को क्या पता, वो तो उसको अपने मिल गए। तो यहां पे अब देखिए, इसने कृत्रिम तरीके से खा लिया, लेकिन रोज ये पैंतरा नहीं अपना सकता वो, है कि नहीं? तो वैसे ही अगर कोई कृत्रिम तरीके से ये शांति प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो शाश्वत शांति नहीं है या वास्तविक शांति नहीं है वो। तो इसलिए जब हम वास्तविक शांति की बात कर रहे हैं तो यहां पर भगवान सबसे पहला लक्षण इस वास्तविक शांति का दे रहे हैं, विहाय कामान और निःस्पृह। दोनों एक प्रकार से एक ही अर्थ है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अपनी भाषा में इसका अनुवाद किया है। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने इस प्रकार से दिया है, विहाय कामान का ट्रांसलेशन प्रभुपाद देते हैं, गिवन अप ऑल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, निःस्पृह वन हु लिव्स फ्री फ्रॉम डिजायर्स। तो शांति के साथ यहां पर प्रभुपाद अपने अनुवाद में मुक्ति भी सम्मिलित कर बता रहे कि वो व्यक्ति उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। तो एक बहुत ही फेमस एक किताब है जिसका ये टाइटल है, लेट गो लिव फ्री। बहुत फेमस पुस्तक है, इसका टाइटल है ये, जिसका अर्थ क्या है, इफ यू वॉन्ट टू लिव फ्री देन लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट बाइंड यू एंड मेक यू इनटू अ प्रिजनर। तो मैं इसके संदर्भ में ये एक उदाहरण जो कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है, नीति शास्त्र का उदाहरण है एक तोते का, कि पहले भी हमने उदाहरण लिया है लेकिन आज के श्लोक के संदर्भ में उपयुक्त है ये उदाहरण। तो शिकारी तोते को कैसे पकड़ता है? तो यहां पर देखिए, ये एक जो उपकरण रखा शिकारी ने, ये ऐसा उपकरण है कि तोता जैसे ही इसके ऊपर बैठता है, जिसके चक्के हैं गोलाकार में रस्सी से बांधा हुआ, तो जैसे ही तोता इसके ऊपर बैठता है तो घूमने लगता है। तो अब शिकारी, क्योंकि तोते को वो बाण से भी मार सकता है शिकारी, लेकिन यदि बाण से तोते को मार देगा तो फिर उस तोते को खरीदेगा कौन? क्योंकि लोग कौन से तोते को खरीदते हैं जो एकदम पूरा इंटैक्ट वन पीस में होना चाहिए। तो वन पीस में शिकारी इस तोते को कैसे पकड़ता है? ऐसे पकड़ता है। तो अब जैसे ही तोता इसके ऊपर बैठता है तो तोते के वजन के वजह से ये घूमने लगता है, इसके जो भी चक्के सब घूमने लगते हैं। तो जैसे ये घूमने लगता है तोते के वजन के वजह से, तो तोता सोचता है कि मैं गिर रहा हूं नीचे। वो जब घूम के नीचे आता है तो तोते को लगता है अरे मैं गिर जाऊंगा, तो वो अपने पंजों को और कष्टा उस पर पकड़ लेता है। तो वो जितना जोर से पकड़ता है अपने पंजों से, उतना वो और तेजी से घूमता है, और जितना तेजी से घूमता है उतना और कष्ट के पकड़ता है वो। तो हो क्या रहा है यहां पर? एक भ्रम है खाली तोते के दिमाग में कि मैं गिर रहा हूं। अरे यही तोता जो इतने ऊपर उड़ सकता है, क्या वो ये नहीं जानता कि अरे मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं मुक्त पंछी की तरह उड़ पाऊंगा? लेकिन उस इल्यूजन के वजह से, उस भ्रम के वजह से वो तोता उसके कस के पकड़ के रखता है, कस के पकड़ के रखता है। और फिर शिकारी ये तोते का खेल देखता रहता है, और तोता इसमें पूरा मग्न, केवल मग्न है, निमग्न, पूर्ण रूप से निमग्न। और फिर शिकारी आता है, उसको कोई हथियार शस्त्र इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने हाथों से वो पकड़ सकता है इस तोते को और पिंजड़े में डाल देता है। तो ये तोते को करना क्या था? लेट गो लिव फ्री। क्या करना था तोते को? बस उसको छोड़ देना था एंड देन ही इज फ्री। तो हमारी स्थिति, हमको बेचारे तोते पर तरस आ रहा होगा, कैसे बेचारा पकड़ा जाता है पिंजड़े के अंदर, जैसे कि हम बहुत मुक्त हैं, मुक्त आत्मा घूम रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें जब हम पकड़ना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि वहां पर वो जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो भौतिक इच्छाएं हमें एक ऐसे भ्रम में डालते हैं, जैसे हमने पिछली बार वो 99 क्लब, मेंबर ऑफ 99 क्लब की स्टोरी ली थी। प्रैक्टिकली एवरीवन इज जॉइन द 99 क्लब, कि 99 स्वर्ण मुद्राएं हैं लेकिन एक राउंड फिगर बनाने के लिए एक स्वर्ण मुद्रा कम पड़ रही है, तो क्यों ना वो एक स्वर्ण मुद्रा। जैसे एक राज्य में एक व्यक्ति को 2 स्वर्ण मुद्राएं उसे मिली, मतलब जंगल में मिली उसे, कुछ चोर दौड़ते दौड़ते चोरी करते हुए उनकी स्वर्ण मुद्राएं 2 गिर गई तो इसे मिल गई। तो अब उसे, जिसको कहते हैं ना प्राइस्ड पोजेशन, उसका मतलब 2 स्वर्ण मुद्राएं मुझे बिना मेहनत कैसे मिली है। तो अब वो उसको छुपा रहा था, उस राज्य में गड्ढा खोद के उसको छुपा रहा था कि इसे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसको रखूंगा। तो राजा देखता है, उस समय राजा भ्रमण के ऊपर निकला होता है, तो राजा देखता है, तो राजा पूछता है क्या कर रहे हो भाई। वो डर जाता है, तो अब राजा से कैसे छुपा है। तो उसने कहा कि देखो राजन, मुझे 2 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं तो मैं इसको यहां पे छिपा रहा हूं। तो राजा कहता है कि अरे 2 स्वर्ण मुद्राएं, अरे मैं तुमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, तुम ये 2 स्वर्ण मुद्राएं के पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रहे। बोला आप 1000 दे दोगे। तो अब उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं, वो राजा ने एक उसके सामने प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा अरे 1000 क्या, मैं अपने प्रजा के लिए मैं तुम्हें मेरा आधा राज्य दे दूंगा। तो वो एकदम भौचक्का रह गया, वाह आधा राज्य दे दोगे तुम, हाँ क्यों नहीं। तब ये बोलता है तो ये वाला साइड देना। कौन सा वाला साइड, जहां पे मैंने 2 अंदर गाड़ रही है। तो इसको फिर क्या बोलते हैं, इसका ऑपोजिट, लेट गो लिव फ्री, होल्ड बैक गेट बाउंड। तो फिर क्या होता है कि वही जो सुंदर तोता पक्षी, वो फिर उस भ्रम में उसको और कस के पकड़ते हुए पकड़ते हुए पकड़ते हुए अपने आप को अंततः वो कहां पाता है, एक पिंजड़े के अंदर। तो आजकल उसको ये एक इंग्लिश में टर्म दिया है, क्या कहते हैं, प्रिजनर ऑफ सो कॉल्ड सक्सेस। क्योंकि वो जो सक्सेस है, वो जो सफलता है, वो सो कॉल्ड है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट सो कॉल्ड नहीं है, ये ध्यान में रखना। सक्सेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सो कॉल्ड, मतलब तथाकथित, लेकिन उसके वजह से जो उसका बंधन हो रहा है वो तथाकथित बंधन नहीं। जैसे ये पिछले साल दिसंबर के महीने में कुछ मुंबई के कुछ विख्यात सेलिब्रिटीज के साथ मैं कुछ वार्तालाप कर रहा था, तो उनमें से मैंने उनको एक प्रश्न पूछा कि क्या कुछ नहीं है आप लोगों के पास, मतलब नाम शोहरत पैसा सब कुछ है। तो मैंने, हम लोग एक गेम खेल रहे थे, कि मैंने पूछा कि ठीक है आप लोग सब लिखिए कि आपका एक, बोलते ना मेरे दिली इच्छा, अंतकरण की इच्छा एक है मेरी जो मुझे, मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या है लिखिए आप, और हम लोग फिर देखेंगे कि किस किस की क्या क्या इच्छा। क्या बोलते हो, दिली तमन्ना, दिली तमन्ना क्या आपकी, तो आप कल्पना नहीं करेंगे जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं और सब कुछ, जो साधारणतः जो हम मिडिल क्लास वाले इतना भाग रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, तो उनकी दिली तमन्ना क्या थी। मैं सबका तो नहीं बता रहा हूं, एक जो मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लगा, तो एक जो बहुत सेलिब्रिटी, एक बड़े सेलिब्रिटी ने लिखा, आई हैव अ डिजायर दैट सम डे आई कैन ईट पानीपुरी एट अ रोड साइड वेंडर। अभी अगर मैं आपको पूछता, आप बताइए आपकी नासिक में आप लोग रह रहे हो इतने सालों से, क्या आपकी दिली तमन्ना, आप इतने पढ़े लिखे हो जो भी नौकरी पेशा सब, हाँ कोई लिखता है ऐसा कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं किसी रेडी वाले के पास मिसल पाव खाऊं खड़ा होके, हाँ, या कोई भगवान के पास आके, भगवान आप एक इच्छा तो मेरी पूरी कीजिए, मुझे पानी पूरी खिलाइए कहीं। एक यूपी के है चौबे जी, बंबई में आए बिजनेस करने के लिए और फिर वापस गए अपने गांव जौनपुर, तो सभी पूरे गांव वाले आए और तो क्या कैसा रहा बंबई में, क्या क्या किया। बता भाई यार क्या बताऊं, अभी ऐसा बिजनेस चालू किया है, बड़े बड़े लोग आलीशान गाड़ी खड़ी करके कटोरा लेके खड़े रहते हैं मेरे सामने। बोला अच्छा, बोला ऐसा कैसा बिजनेस, बस क्या बताऊं अभी, आके देखना होगा तुमको। तो वो लोग सब आए अगली बार आके देखे, समझ गए आप लोग। तो पानीपुरी का ठेला था, सब आप देखो बड़े बड़े लोग कटोरा लेके खड़े रहते हैं पानीपुरी की स्टॉल के साथ, अच्छे खासों के हाथ में कटोरा थमा देता है वो। तो अब ये व्यक्ति जिसके पास क्या कुछ नहीं है, तो उसकी ये दिली तमन्ना दैट वन डे लाइक अ नॉर्मल पर्सन आई विल बी एबल टू ईट दैट यू नो आउटसाइड सम आउटसाइड वेंडर। तो यहां पर इसको प्रिजनर ऑफ सो कॉल्ड सक्सेस। तो मुझे कुछ दिन पहले एक पावर पॉइंट एक मेरे मित्र ने ईमेल किया था, काफी अच्छा मुझे लगा, तो मैं सोचा कि इस पॉइंट के ऊपर हम इसको शेयर करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन है एक ऊंट या ऊंटनी बोल सकते हैं और उसका छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा अपनी मां से पूछता है, मदर मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। श्योर वाई सन, इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू। तो इसका पहला क्वेश्चन बच्चे का, व्हाई डू कैमल्स हैव हम्स। वेल सन वी आर डेजर्ट एनिमल्स, वी नीड द हम्स टू स्टोर वाटर एंड वी आर नोन टू सर्वाइव विदाउट वाटर। तो उसका दूसरा प्रश्न, ओके देन व्हाई आर आर लेग्स लॉन्ग एंड आर फीट राउंडेड। सन ऑब्वियसली दे आर मेंट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट बेटर देन एनीवन डज, दैट इज द रीजन। Next question. Okay, then why are our eyelashes long? Sometimes it bothers my sight. My son, those long thick eyelashes are your protective cover. They help to protect your eyes from the desert sand and wind. I see. So the hump is to store water when we are in the desert. The legs are for walking through the desert and these eyelashes protect my eyes from the desert sand. So this is the conclusion of the child. Just one more question, mate. तो उसने बोला, yes, my dear. What the hell are we doing in the zoo then? अगर ये सब हमको दिया है कि हम लोग डेजर्ट में रहें, we are desert animals, तो हम एक कमबख्त zoo में क्या कर रहे हैं? This is called prisoner of success. तो इसका कंक्लूजन ये था, स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंसेस आर ओनली यूजफुल इफ यू आर एट द राइट प्लेस।
द क्वेश्चन इज वेर आर यू नाउ.
हरे कृष्ण, समझ में आया आपको? तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि तोते की व्यथा या कथा, कथा व्यथा, व्यथा कथा. तब ये तोता बंद पिंजड़े के अंदर, तो अक्सर हम ये उदाहरण देते हैं कि आप देखोगे कि जब भी आप जू में जाओगे या ऐसे लोग पिंजड़े अपने घरों में भी पिंजड़ों में पक्षी रखते हैं, तो कौन से पक्षी रखते हैं? वो ऐसे पक्षी रखते हैं जो बहुत सुंदर दिखने वाले होते हैं. देखिए अभी देखिए कितना सुंदर रंग बिरंगी तोता है, तो एकदम जो सुंदर दिखने वाले पक्षी उनको ही आप देखोगे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जो होता है उसके अंदर. कभी नहीं देखोगे कौवे को बांध के रखा हुआ किसी ने. तो जो कौवा है, एक हम ये कह सकते हैं कि चाहे उसका वो दुर्गुण हो, क्या दुर्गुण? कुरूपता. काला कौवा, कांव कांव करने वाला, बोलने में भी कोई उसकी मधुर वाणी नहीं है, दिखने में भी कुछ सुंदर नहीं है और गंदगी में रहता है ये. लेकिन कभी उसको कोई पिंजड़े में बांध के अपने घर पे नहीं टंगाता कि आओ देखो मेरे घर पे कौवे को देखो. सो मेनी टाइम्स आवर सो कॉल्ड सक्सेस ऑफ नेम, फेम, ब्यूटी एक्सेट्रा बिकम्स लाइक शैकल्स और प्रिजन बार्स विच बाइंड्स अस. तो यहां पे भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान, कि जो ऐसी भौतिक कामनाएं हैं विहाय, इनको, इनसे दूर रहो अर्जुन. और फिर निस्पृहा, तो प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन क्या किया है, दैट लिव फ्री फ्रॉम दीज मटीरियल डिजायर्स. लेट गो, लिव फ्री, जस्ट रिमेंबर दैट. तो अब प्रभुपाद ट्रांसलेशन अपना परपोर्ट में बहुत ही विस्तार से ये वर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलेबरेट कर रहे हैं, डिजायरलेस. तो ये प्रश्न कोई पूछ सकता है, तो फिर क्या भगवान आज के श्लोक के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि डिवॉइड ऑफ मटीरियल डिजायर्स और निस्पृहा और विहाय कामान मीन्स आई शुड बिकम डिजायरलेस? प्रभुपाद लिखते हैं नो, नो बडी कैन बिकम डिजायरलेस. दिस इज अनदर बिग इल्यूजन टू थिंक लाइक इफ आई से दैट आई वॉन्ट टू बिकम डिजायरलेस, दिस मीन्स दैट आई हैव अ डिजायर टू बिकम डिजायरलेस, है ना? हाउ कैन दिस स्टेटमेंट be of any value if I say I want to become desireless? That itself is a desire. तो बहुत सुंदर तरीके से इसको हमारे आचार्य explain करते हैं कि जो English का word है desireless और एक English का word है priceless. तो हम अगर इस priceless word की व्याख्या करें तो प्राइसलेस डायमंड. अभी अगर आपको ये प्राइसलेस डायमंड कोई दिखाए और कहे कि क्या बहुमूल्य, बोलते ना अमूल्य, बहुमूल्य या प्राइसलेस, इनवैल्यूएबल, तो अब इसका आप अगर उसका लिटरल मीनिंग प्राइसलेस मतलब फुकट है क्या? तो डिजायरलेस अगर कोई कहे विदाउट डिजायर, तो प्राइसलेस अगर कोई कहे विदाउट प्राइस. तो यदि मैं आपसे पूछूं कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइसलेस, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इस वर्ड प्राइसलेस, इस वर्ड को? हा, मोस्ट वैल्यूएबल, और कुछ नहीं? नहीं, वो तो आपने दूसरा वर्ड बोल दिया, मतलब उसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हाँ, या नो प्राइस, नो ऑर्डिनरी प्राइस कैन बी फिक्स्ड. उसका कोई ऑर्डिनरी प्राइस फिक्स नहीं कर सकता. तो अब हम कैसे समझे जब प्रभुपाद यहां पर कह रहे हैं डिजायरलेस, विच मीन्स अ डिवोटी ही डजंट हैव ऑर्डिनरी डिजायर्स, जस्ट लाइक अ प्राइसलेस डायमंड cannot have some ordinary price tag on it. So we have priceless diamond and desireless devotee. Kaise samjhe abhi? That a devotee like Srila Prabhupada, to jo Prabhupada ne itne 500 se bhi zyada adhik iskon ke mandir khade kiye, इतना प्रचार, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इतने सारे भक्त, इनकी दीक्षा, ये सब कुछ, तो कोई कैसे कह सकता है दैट प्रभुपाद वॉज डिजायरलेस? बट हिज डिजायर्स वर नॉट ऑफ ऑर्डिनरी काइंड. सो देयरफॉर व्हेन कृष्णा इज सेइंग इन दिस वर्स दैट वन हैज टू बिकम निस्पृह और विहाय कामान और डिजायरलेस, it means not with some ordinary desires of, you know, the so-called pleasures of this world, but to go beyond and experience the highest pleasure of Krishna Prem. तो अब आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं. पुमांस चरति निस्पृह, चरति इस शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं. तो एक अर्थ है गुप्तचर, और भगवान ने देखिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आज के श्लोक में चरति ये शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने वर्ड इस्तेमाल किया था अचरति. अचरति का अर्थ क्या है? अचल, जैसे कि समुद्र अचल, अटल, एक जगह पर स्थित है कि नहीं. तो फिर मानो अर्जुन को यह प्रश्न उठे कि भाई मुझे क्या समुद्र की तरह बनना है कि एकदम टोटली इनएक्टिव, बस एक जगह पर स्थित, अचल अटल. तो भगवान इसलिए आज के श्लोक में उसको और आगे एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, पुमांस चरति. तो या विचरण, विचरण ये जो शब्द है मतलब एक्टिव, कि वो जो शांति को प्राप्त किया है वो बहुत ही एक्टिव है. तो चरति से ये अर्थ निकला है गुप्तचर. तो गुप्तचर ये कौन होता है? स्पाई, जिसको अंडरकवर स्पाई बोलते हैं ना. तो ये गुप्तचर, भगवान ने ये गुप्तचर शब्द क्यों इस्तेमाल किया या चरति से गुप्तचर क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? जैसे कि एक गुप्तचर, मान लीजिए भारत, भारतीय सेना का कोई गुप्तचर भेजा गया है पाकिस्तान, है कि नहीं. तब गुप्तचर जब किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो वो कैसा अपने आप को प्रतीत करता है वहां पे? तो आप देखोगे वो भारतीय है लेकिन पाकिस्तान में गया है तो थोड़ी दाढ़ी होगी, फिर वो है ना, जैसे कोई मुसलमान दिखता है वैसे दिखेगा ना वो, क्योंकि उनमें घुल मिलना है उसको, है कि नहीं. ही हैज टू मिंगल अमिड्स द एनिमी पार्टी. लेकिन उसके मन में वो किसका सेवक है? भारत सरकार का सेवक है. ऑल्दो ही माइट बी टेकिंग एनी डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, बट विद इन हिज हार्ट दैट पर्सन इज लॉयल टू द गवर्नमेंट. तो भगवान ये बोल रहे हैं कि वो भक्त चाहे कितनी भी भौतिक इच्छाओं के बीच दिख रहा हो या डिजायर्स के बीच दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर प्रामाणिकता किसके प्रति है? भगवान कृष्ण के प्रति। मैं चाहे कोई भी रूप ले रहा हूं, कोई भी रंग ले रहा हूं, कोई भी भाषा बोल रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर लॉयल्टी है वो भगवान के प्रति, या जो भी गुप्तचर की, उसके राजा के प्रति या सरकार के प्रति। और दूसरा अर्थ चरती का भगवान ने दिया है मैसेंजर या संदेशवाहक, तो जो संदेश देता है। अब यहां पर हम रामायण से उदाहरण ले हनुमान जी का, तो हनुमान जी दोनों बने, संदेशवाहक भी बने और गुप्तचर भी बने। तो हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कैसे किया, किसे पता है? हनुमान जी बन के प्रवेश नहीं किया हनुमान जी ने, एक बिल्ली, हनुमान जी एक बिल्ली बने, तो पूरा अपना रूप या योनि बदल दी, बिल्ली बने और बिल्ली बनकर वहां पर वो विचरण कर रहे। लेकिन बिल्ली बनने का अर्थ ये नहीं कि अभी चूहा ढूंढ रहे हैं वहां पे। कि कहां लंका का कोई अच्छा सोने वाला चूहा मिलेगा, नहीं, चाहे कोई भी रूप लिया लेकिन मन में लॉयल्टी किसके प्रति है? राम के प्रति। तो हनुमान जी यहां पर, अगर हनुमान जी की तुलना उस पुमांस चरति जो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं उससे करें, तो हनुमान जी वॉज अ पर्सन हु यूज्ड हिज डिजायर्स इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड राम। सो ही वॉज इन द ट्रू सेंस अ डिजायरलेस डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, यूजिंग ऑल हिज डिजायर्स, जस्ट लाइक अ प्राइसलेस डायमंड, सो अ प्राइसलेस डिवोटी और अ डिजायरलेस डिवोटी। तो और फिर उन्होंने जाके माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश भी दिया। तो चरती का जो दूसरा अर्थ है वो भी हनुमान जी ने सिद्ध किया, क्या? संदेश वाहक या मैसेंजर। और उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में विदुर वो मैत्रेय को ये श्लोक कहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहायैव चरन्ति नूनम्। तो यहां पर क्यों ये श्लोक हमने लिया, चरन्ति, जैसे आज के श्लोक में भी चरति तो एक ही है वो, भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। ओ माय लॉर्ड, ग्रेट फिलंथ्रोपिक सोल्स ट्रैवल ऑन द अर्थ ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड टू शो कंपैशन टू द फॉलन सोल्स हु आर एवर्स टू द सेंस ऑफ सबॉर्डिनेशन टू द लॉर्ड। तो यहां पे मुख्य शब्द है ट्रैवल ऑन द अर्थ, मतलब चरंती, तो वो घूम रहे हैं सब कुछ। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया था, यू आर अ सन्यासी, यू आर अ रेनन्सिएंट, हाउ कम यू आर फ्लाइंग इन जेट प्लेन्स, व्हाट काइंड ऑफ रेनन्सिएशन इज दिस? तो प्रभुपाद ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रभुपाद ने कहा, इफ द कंडीशन्ड सोल्स आर फ्लाइंग एट जेट स्पीड टुवर्ड्स हेल, Do you expect me to sit on a bullock cart to catch them? I have to be even on a faster jet plane than them. तो इसलिए हम अगर श्रील प्रभुपाद का उदाहरण ले, तो ये जो दोनों चीजें हैं श्रील प्रभुपाद ने भी सिद्ध की, undercover spy and also the true messenger of Chaitanya Mahaprabhu. श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब अमेरिका में श्रील प्रभुपाद वहां पर प्रीचिंग शुरू किए और वहां पर जाकर अमेरिकन्स इन हिप्पीज को चार नियम बताया, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, ये सब, तो ये सब जो बताया प्रभुपाद ने, तो ये लोग सब प्रभुपाद से प्रभावित हुए उनकी शुद्धता से और ये सब पालन करना शुरू करने लगे। तो फिर प्रभुपाद ने कहा, Only if the American government would have come to know my plans. Prabhupada ने कहा, दे वुड हैव नेवर अलाउड मी इनसाइड देयर कंट्री, कि मैं यहाँ पे क्या करने आ रहा हूँ, मैं इनका मांसाहार बंद करने आ रहा हूँ, मैं इनका नशा पत्ता ये सब बंद करने आ रहा हूँ, तो ये लोग मेरे को कभी एंट्री नहीं देते थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सो आई एंटर्ड लाइक अंडर कवर स्पाई बट विद द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कोई भी रोल लेने के लिए तैयार थे, जब तक कि ऐसे ऐसे जगहों पे प्रभुपाद गए अमेरिका में। एक शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद को एक एवलॉन बॉलरूम करके एक जगह थी, जहां पे ये सारे हिप्पियों का बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा था। तो वहां पर बहुत फेमस एलन गिन्सबर्ग, तो वो उस जमाने के हिप्पियों के गुरु, तो उन्होंने प्रभुपाद को बुलाया कि आप आइए और ये सारे जो सैकड़ों हिप्पी यहां पर एकत्रित होंगे इनको आप कुछ बोलिए। तो प्रभुपाद वहां पर भी जाने के लिए तैयार थे, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं ऐसी जगह पर कैसे जा सकता हूं। नहीं, अगर संदेश वहां तक पहुंचाना है तो हनुमान जी अगर लंका में प्रवेश कर वो भी कहां, रावण के अंतपुर में, जहां रावण अपनी रानियों के साथ लेटा हुआ, हनुमान जी वहां तक पहुंचे एक ब्रह्मचारी होने के बावजूद। तो प्रभुपाद गए वहां पर, तो वहां पर उस स्टेज के ऊपर उनका थीम था द बनाना थीम। तो प्रभुपाद ने देखा कि सभी लोग केले की तरह ड्रेस्ड हैं, तो केले की तरह दिख रहे हैं सब, उनका जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह सब केले की तरह, और जो भी उनके गाने लिरिक्स वगैरह डांस वगैरह सब बनाना डांस और बनाना लिरिक्स और बनाना बनाना। तो प्रभुपाद को समझ में नहीं आया ये क्या चल रहा है। तो फिर प्रभुपाद को वहां पर जो ऑर्गेनाइजर था उन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद दीज हिप्पीज हैव रिसेंटली फाउंड अ वेरी इकोनॉमिकल वे टू गो हाई। प्रभुपाद ने कहा हाउ, दे टेक बनाना पील्स एंड दे बर्न, केले के छिलके हैं उनको जलाते हैं और उसका जो फ्यूम्स ये सूंघते हैं तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो प्रभुपाद ने वो जो भी प्रोग्राम किया, प्रभुपाद हंस रहे थे कि मैंने इंडिया में केले के बहुत से पदार्थ खाए हैं, सुने हैं, देखे हैं, केले के चिप्स होते हैं, केले की सब्जी होती है, ऐसे भी केला खाते हैं, फ्रूट सलाद में डालते हैं, लेकिन ये केले के छिलके सूंघ के नशा ले रहा है कोई, ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना। तो फिर प्रभुपाद आ गए और फिर एक जो अभी अभी डिवोटी बने थे वो बोले कि प्रभुपाद वो लोग बहुत खुश हुए हैं आप उनके प्रोग्राम में आए, तो वो लोग डोनेशन देना चाह रहे हैं अभी हर महीना इस्कॉन को। तो बोले अच्छी बात है, लेकिन वो डोनेशन केला देंगे, क्रेट भर भर के केला। प्रभुपाद बोले अच्छा क्यों, तो ऐसा क्यों? बोला हाँ, एक शर्त पे दे रहे हैं वो केला, कि केला आप इस्तेमाल करो, छिलके वापस उनको दे देना। तो ऐसे ऐसे जगहों पर, जैसे एक प्रभुपाद लीलामृत में मेंशन है कि एक जगह था द मॉर्निंग स्टार रैंच, और ये फेमस था, इसको इसको उस जमाने में ये कहा गया था द नेकेड हिप्पी कम्यून, कि वहां पे सारे हिप्पी निर्वस्त्र अवस्था में घूमते फिरते। तो वहां प्रभुपाद को प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, तो प्रभुपाद गए और प्रभुपाद ने वहां पर जब देखा सारे हिप्पी निर्वस्त्र घूम रहे हैं, तो एक व्यक्ति वहां पर कुछ गार्डनिंग कर रहा था, तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे, देखे क्या इसने अपना हाल कर लिया। तो प्रभुपाद ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो बोला आई एम प्लांटिंग पोटेटोस। प्रभुपाद बोले व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ। अब ये प्रश्न जिंदगी में उसको किसी ने नहीं पूछा था। अब देखिए, प्रश्न था, लेकिन उसकी गहराई क्या थी ये प्रभुपाद जाने। प्रभुपाद ने जब पूछा व्हाट आर यू डूइंग, उसको खाली लगा कि व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, लेकिन प्रभुपाद ने जब ये पूछा व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, तो वो व्यक्ति आगे चल के कपड़े पहन के नीचे इस्कॉन में आके ज्वाइन किए, बहुत बड़े सन्यासी हैं अभी। तो अब देखिए प्रभुपाद ऐसे ऐसे जगह पर, जैसे कि चरती पुमांस चरती और निस्प्रहा, क्योंकि उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा और वो है चैतन्य महाप्रभु का संदेश। तो ये वो जो भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं पुमांस चरती, उसका अर्थ ये है। तो स्प्रहा शब्द के दो अर्थ अब बताए गए हैं, एक है भौतिक इच्छा करना और दूसरा द्वेष करना। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, निस्प्रहा, तो जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं है और जिसके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, वो वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो अब कुछ उदाहरण हम लेंगे। सबसे पहला उदाहरण निस्प्रहा का प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के समक्ष जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को पूछा कि प्रहलाद कोई वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से कहते हैं कि भगवान मैं कोई वणिक नहीं हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि मैंने आपकी भक्ति की तो आप मुझे कुछ दो उसके बदले में, या कुछ मुझे मिलेगा इसलिए मैंने आपकी भक्ति की। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। तो यहां पर प्रहलाद महाराज को डिजायरलेस कहा गया है या निस्पृहा कहा गया है, कि उनके सामने प्रपोजल था मांगो जो मांगना है, और कौन, भगवान स्वयं साक्षात बोल रहे हैं कि मांगो जो मांगना है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा नो, आई एम नॉट अ ट्रेडर, मैं कोई आपके साथ व्यापार करने के लिए नहीं आया, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, इट्स जस्ट लव फॉर यू माय डियर लॉर्ड, और आपको यदि कुछ देना ही है तो ये हिरण्यकशिपु का उधार करो मेरे पिताजी का। और आगे चल के प्रहलाद महाराज ने इच्छा क्या की, अब देखिए द एपिटोम ऑफ बीइंग डिजायरलेस। प्रहलाद महाराज उन्होंने इच्छा ये की कि जितने बद्ध जीव पापी जीव हैं उन सब का पाप मुझे दे दो, आई एम रेडी टू गो टू हेल इफ दे कैन गो टू योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड द एपिटोमी ऑफ डिजायरलेसनेस, टू डिजायर समथिंग सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये प्रहलाद महाराज का उदाहरण। दूसरा उदाहरण चैतन्य चरितामृत में श्रीधर खोलाबेच का, कि जो खाली केले के पत्ते बेचा करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में जब श्रीधर से पूछा कि श्रीधर मांगो जो तुमको वरदान मांगना है, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हुआ, तो श्रीधर ये चैतन्य महाप्रभु से मांगते हैं कि मुझे एक ही वरदान दीजिए, यदि आपको देना ही है तो, आप इतना हट करें मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको देना है तो एक ही वरदान दीजिए कि आप रोज मुझसे वो केले के पत्ते खरीदते हुए वो वाद विवाद करें, बार्गेन करें। अब सोचिए वापस से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं कि कोई वरदान मांगो, लेकिन इनके अंदर कोई उस प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं। ये एक उदाहरण ब्रह्म वैवर्त पुराण से है। गंधर्वों के राजा पुष्कर नगरी जो है राजस्थान में भी जो है, तो वहां पर पुष्कर में ये भगवान शिवजी की आराधना कर रहे थे, और जब भगवान शिवजी प्रकट हुए तो गंधर्व राज ने भगवान शिवजी से मांगा कि मुझे आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमा भक्ति दीजिए, और मुझे एक ऐसा कृष्ण प्रेमी पुत्र प्रदान कीजिए। तो भगवान शिव जी ने कहा नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं दे सकता, तुम्हें अगर इंद्र पद चाहिए, ब्रह्मा का पद चाहिए, तुम्हें यदि सोमरस का पान करना है, अप्सराओं के साथ उनका संग करना है, ये सब मांगो तुरंत, ये सब मैं दे दूंगा, ये कृष्ण प्रेम वगैरह ये सब मैं। तो गंधर्व राज जो भगवान शिवजी से कहते हैं, तो यदि आप कृष्ण प्रेम मुझे नहीं दे सकते तो फिर आप मुझे बताइए कि कौन है जो मुझे वो दे सकता है, तो मैं उनकी आराधना करूं, उनकी तपस्या करूं। और तभी शिवजी प्रसन्न हुए। शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। कृष्ण प्रेम, हाँ मैं अवश्य तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि मैं स्वयं वही उनका ही प्रेमी हूं। तो भगवान शिवजी यहां परीक्षा कर रहे थे उनके गंधर्व राज की, और ये देखे कि इनके अंदर विहाय कामान और निस्प्रहा। और अंतिम उदाहरण हमारे अर्जुन की। अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरी नारायणी सेना और मैं, मांगो क्या चाहिए, तो अर्जुन उस समय जानते नहीं थे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो तो 11वें अध्याय में अर्जुन को पता लगा, सब विश्वरूप देखा वगैरह, तो ये युद्ध से पहले की बात है। तो अर्जुन ने तुरंत स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविकली भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आप ही चाहिए, आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके अंदर कोई भौतिक स्पृहा नहीं थी। तो अब आज का श्लोक ले जिसके अंदर वास्तविक शांति की बात भगवान कर रहे हैं, और 5वें अध्याय का ये श्लोक जिसके अंदर भगवान कहते हैं, इसमें भी जो अंतिम लाइन है क्या है, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो यहां पर भी भगवान पीस फॉर्मूला बता रहे हैं। प्रभुपाद ने इस प्रकार से ट्रांसलेट किया, अ पर्सन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी नोइंग मी टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स and the benefactor and well-wisher of all living entities attains peace from the pangs of material miseries. तो ये श्लोक में भी भगवान वास्तविक शांति का सूत्र दे रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि भाई ये दूसरे अध्याय में आज का जो श्लोक हम ले रहे हैं और ये श्लोक, इन दोनों का कोई तालमेल है, कोई कनेक्शन है? जरूर है। तो इसका कनेक्शन आज के श्लोक का और 5.29 पांचवें अध्याय के श्लोक का ये इस प्रकार से है कि जब भगवान आज के श्लोक में निस्पृहा कहे, टू बी डिजायरलेस, तो जो पांचवें अध्याय का जो श्लोक हमने लिया 29वां, उसमें भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञता, कि जो व्यक्ति मुझे भोक्ता मानता है या भगवान को परम भोक्ता मानता है, मतलब सुप्रीम एंजॉयर, वन हु understands that Krishna is the supreme enjoyer, he is really nispraha. उसके अंदर कोई भोग करने की इच्छा नहीं रह जाती। फिर जब भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वरम, जो ये मान लेता है कि भगवान कृष्ण ही सभी लोकों के ईश्वर हैं, तो उसके अंदर कोई सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं रहता। निर्मम, that is the real positive meaning of being nirmama, जो पांचवे अध्याय में भगवान ने कहा। और फिर अंततः जो भगवान ने कहा सुरदम सर्वभूतानाम, कि जो ये जान लेता है कि इतने बड़े भगवान, ऐश्वर्यशाली भगवान सबके हृदयों में स्थित होकर उनके उद्धार हेतु कार्यरत हैं, तो उसके अंदर फिर कोई अहंकार नहीं रह जाता कि फिर मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। So his ahankar is dovetailed into positive true ego when he understands that Krishna is the real friend and well-wisher of all conditioned living entities. तो ये थोड़ा technical है आज का श्लोक और 5.29 का connection, जिस इन दोनों श्लोक के अंदर भगवान शांति का सूत्र दे रहे हैं। तो हमने इसकी चर्चा की थी पिछले श्लोक में कि हालांकि समुद्र का उदाहरण भगवान ने दिया, तो समुद्र करता क्या है, वो नदियों के जल को स्वीकार करता है और फिर बादलों को देता है। तो हमने ये उदाहरण लिया था। उसी प्रकार से एक भक्त सारी सुख सुविधा भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाता है, जितने सारे ऐश्वर्य संसार के हैं उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करता है। और अंत में आज के श्लोक के संदर्भ में राजा मयूरध्वज की एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसे भगवान के भक्त हुए कि जिनके निस्पृहा निर्ममा निरअहंकार गुणों के वजह से भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू टपकने लगे। तो राजा मयूरध्वज, ये कथा महाभारत में, जैमिनी महाभारत में इसका वर्णन आया है। तो ताम्रवती नाम के राज्य के राजा रहे राजा मयूरध्वज, और इनके पुत्र जिनका नाम था ताम्रध्वज। तो राजा मयूरध्वज और ताम्रध्वज, ये भगवान श्री कृष्ण और पांडव जब मौजूद थे उस समय की बात है, द्वापर युग में। तो ऐसे अनन्य भक्त ये दोनों, बाप बेटा दोनों, भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के, विशेष रूप से कृष्ण और अर्जुन के अनन्य भक्त ये दोनों। तो अब हुआ क्या कि युद्ध के पश्चात जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसी समय मयूरध्वज राजा, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया अपने राज्य में। तो अश्वमेध यज्ञ का नियम ऐसा है कि वो अश्व या घोड़े को छोड़ते हैं, और घोड़ा जिस जिस राज्य में जा रहा है तो सभी अपनी स्वीकृति देते हैं कि हाँ, हम इस राजा को हमारा राजा स्वीकार करते हैं, और यदि कोई राज्य उसे स्वीकार नहीं करता तो उसे ललकारना होता है। फिर तब हुआ क्या कि ताम्रध्वज, जो मयूरध्वज के पुत्र, वो अपने राज्य का अश्व या घोड़ा लेकर निकले, और वहां अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध का अश्व या घोड़ा लेकर निकले। तो अब यहां दोनों की भेंट हुई, किसकी? अर्जुन की और ताम्रध्वज। तो ताम्रध्वज, हालांकि जो भगवान कृष्ण और अर्जुन को अपना सर्वस्व मानते थे, लेकिन यहां पर क्योंकि अपने राजा और पिता का कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध के लिए उनको ललकारा। किसको? अर्जुन को। अब देखिए, अर्जुन हाल ही में पूरा युद्ध जीते हैं कुरुक्षेत्र का, तो ऑलरेडी जो वर्ल्ड फेमस वॉरियर अर्जुन, और अभी जिन्होंने ये खिताब जीता है कुरुक्षेत्र के युद्ध जीतने का, तो सोचो किसकी हिम्मत होगी अर्जुन के सामने युद्ध को ललकारने की। लेकिन ताम्रध्वज, इन्होंने अर्जुन को ललकारा और अर्जुन को हरा दिया। तो अर्जुन जब हार गए तो सबसे पहले गए कृष्ण के पास। ये बहुत अच्छी आदत अर्जुन की, हमारे अंदर भी आनी चाहिए। तो सीधे कृष्ण के पास गए, और भगवान जानते थे कि अर्जुन हारने वाला है, आएगा मेरे पास ही वापस। तो जब पूछा, ये कैसे हुआ, ये कौन है ये ताम्रध्वज, इसने मुझे कैसे हरा दिया अकेले इसने? तो भगवान ने कहा, इसके पिता के कारण। तो कौन है इसके पिता? तो भगवान कहे, इसके पिता हैं वो महान राजा मयूरध्वज। तो अब अर्जुन जानना चाहते थे कि भाई कौन है इतने महान, भगवान कृष्ण इनको महान बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि उनकी महानता मैं कहूंगा नहीं, तुम अपनी आंखों से देखना। तब भगवान और अर्जुन वो दोनों अपना भेष बदलकर ताम्रवती पहुंचे, मयूरध्वज के नगरी में। तो भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिए और अर्जुन को अपने शिष्य का रूप उन्होंने दिलवाया, और वो वहां पर पहुंचे। तो अर्जुन अब छोटे से उनके ब्राह्मण के शिष्य बने हुए, भगवान कृष्ण ब्राह्मण बने हुए। जैसे ही मयूरध्वज इन्होंने ब्राह्मण को देखा तो स्वागत किया उनका, पूछा कि क्या आपकी सेवा हम कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रास्ते में आ रहा था और मेरा जो पुत्र है उसको किसी अघोरी तांत्रिक ने पकड़ लिया है, और वो बलि चढ़ाने वाला है मेरे पुत्र की। तो राजा बोलता, तो मैं तुरंत अपनी सेना भेजता हूं। नहीं 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 नहीं, उसने कहा है कि वो एक शर्त पर मेरे बेटे को छोड़ेगा, यदि इस राज्य का राजा अपने शरीर का आधा भाग, दाहिना भाग काटकर मुझे देगा। मतलब राजा मयूरध्वज कि शरीर का दाहिना भाग काट कर जब उसे दिया जाएगा तब वो इस ब्राह्मण के पुत्र को छोड़ेगा। तो अब अर्जुन बोले, ऐसा कैसा आप टेस्ट ले रहे हो? अर्जुन को पता नहीं था कि, अर्जुन बोले कि मैं तो जानता हूं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अर्जुन भगवान कहे कि देखते रहो। तो अब राजा मयूर ध्वज बिना हिचकिचाए तुरंत वो रेडी हो गए कि चलो कहां पर वो अघोरी तांत्रिक है, मैं अपना दाहिना भाग काटकर अर्पित कर रही। तो भगवान कहते नहीं 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 नहीं, वो नहीं करेगा, आपके बेटे को आपको काटना पड़ेगा। तो आपके बेटे को आपको आधे इसमें काटकर उसका आपका दाहिना भाग देना पड़ेगा, वो नहीं करेगा। तो ये और देखो, अभी बेटा अपने बाप को ऐसे काट कर देगा। तो अर्जुन और पूरा वापस वेपतुष्ट शरीर में हो रहा है उनका, कांपने लगे हो। तब यहां पर ताम्रध्वज को बुलाया गया। तो भगवान कहे, इसी ने हराया था ना अभी, देखो। तो अर्जुन बोले नहीं नहीं, अरे इतनी इतनी बड़ी बात करनी क्या जरूरत है उस। तो भगवान बोले देखते रहो। तो ताम्रध्वज तलवार लिए और सारा राज्य वहां पर, अब इनके ऐसे महान राजा का बलिदान हो रहा है, उनका दाहिना भाग काट कर दिया जा रहा है किसे, कोई तांत्रिक को, अघोरी तांत्रिक को। तो यहां पर काटना प्रारंभ हुआ। राजा मयूर ध्वज का शरीर उनके ही पुत्र ताम्रध्वज काट रहे हैं बीच से। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। तो अब दाहिना भाग जो कटना शुरू हुआ, मतलब बीच से कटना जब शुरू हुआ, तो राजा मयूर ध्वज की जो बाई आंख, उसमें से आंसू टपकने लगे। अब यह तो स्वाभाविक है ना कि किसी का शरीर ऐसे बीच में से काटा जाएगा, आंसू निकलना ये कोई अपराध है? तो भगवान बोले नहीं, ये दान बेकार हो गया। अर्जुन बोले मतलब कि रो रो के दान दे रहे, ऐसे दान से हम नहीं ले सकते दान, रो के दान दे रहे हैं। तो अब देखिए, अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि राजा मयूर ध्वज अपने आप को अपना दाहिना भाग काट कर अर्पित कर रहे हैं और उनके बाईं आंख से आंसू टपकने लगे, तो आप बोल रहे हो कि वो स्वीकार नहीं कर सकते। तो यहां पर ताम्रध्वज भगवान से कहते हैं, वो तो जानते नहीं थे कि भगवान है। अब देखिए, कोई ब्राह्मण खाली मांग रहे हैं, ये नहीं कि वो जानते थे कि भगवान कृष्ण साक्षात है। तो ताम्रध्वज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, देखिए क्या आपने कभी देखा है कि किसी के खाली एक आंख से आंसू निकल रहे? कोई व्यक्ति के आंसू निकलते तो दोनों आंख से निकलते ना। क्या आपने देखा कभी कि किसी के एक आंख से आंसू निकल रहा है? आप देखिए उनके जो दाहिनी, उनकी जो दाहिनी आंख है वहां से आंसू नहीं निकल रहा, लेकिन बाईं आंख से आंसू निकल रहा है। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में बोले, तो फिर उसका क्या मतलब है? तो ताम्रध्वज कहे, उसका अर्थ यह है कि जब मैं इनका ये बीच से इनका शरीर में काट रहा हूं, और क्योंकि आपने दाहिना भाग मांगा है, तो जो बायां भाग है वो रो रहा है कि मैं क्यों नहीं सेवा में जा पा रहा हूं। तो ये जो बाईं आंख से आंसू निकल रहे हैं, ये इसके आंसू नहीं है कि क्यों मुझे काटा जा रहा है, वो आंसू इसलिए है कि क्यों मुझे नहीं उस दान में सम्मिलित किया जा रहा, केवल दाहिने भाग को क्यों, मुझे क्यों नहीं। इसलिए वो बाईं आंख और वो बायां भाग जो है उनके शरीर का, वो रो रहा है, वो विलाप कर रहा है। उसलिए वाई द अदर हाफ ऑफ माय बॉडी इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द सर्विस ऑफ दिस ब्राह्मणा, वाई ओनली द राइट साइड ऑफ माय बॉडी इज बीइंग यूज्ड, therefore the left side is crying। तो जब अर्जुन ने और भगवान ने ये सुना तो दोनों के दोनों आंखों से आंसू निकले गए, और फिर भगवान वहां पर अपना निज रूप धारण किया उन्होंने, और फिर राजा मयूरध्वज को उनका जो शरीर है वो पुनस्थापित करवाया, और फिर अर्जुन को कहा अब तुम जान गए कि इनके पुत्र ने तुमको क्यों और कैसे हराया। तो ये हैं राजा मयूरध्वज, जो कि आज का जो हमने श्लोक लिया, निस्पृहा, निर्मम और निरहंकार, कि जिनके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, केवल इच्छा भगवान को संतुष्ट करने की, जिनके अंदर कोई भौतिक ममता नहीं और कोई अहंकार नहीं, केवल एक ही उनका उद्देश्य कि कैसे मैं अपने सर्वस्व से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। तो जब कोई व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त करता है तो भगवान कहते हैं वो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो ये है आज के इस श्लोक का निचोड़ या निष्कर्ष, और इसके पश्चात भगवान ने अंतिम जो पंक्ति कही, स शांतिम अधिगच्छति, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति, जैसे कि राजा मयूरध्वज जैसे व्यक्ति जिनके अंदर वो तीन गुण हैं, वो व्यक्ति अधिकृत रूप से भगवान के धाम को प्राप्त होते, गच्छति का अर्थ है भगवान के धाम को प्राप्त होते अधिकृत तरीके से। और वो कैसे प्राप्त वो व्यक्ति करता है इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को, इस दूसरे अध्याय का अंतिम एवं सर्वोच्च उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण पूरा इस अध्याय का निचोड़ इस एक श्लोक में दे रहे हैं। इसे सुनने के लिए ठीक इसी समय अगले बुधवार को आप लोग आ जाइएगा। तो ये दूसरा अध्याय हम पूरा करेंगे और उसके पश्चात फिर भगवद गीता का तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण तो ये सोचे थे कि इसके बाद अर्जुन गांडीव उठा लेंगे, लेकिन नहीं, अर्जुन के और भी बहुत से प्रश्न हमारे लिए, ताकि हमारा गीतामृत कार्यक्रम चलता रहे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम श्लोक दूसरे अध्याय का, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय।